प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। न्यू साउथ वेल्स पूर्व डेप्यूटी प्रीमियर जॉन बारलारो ने अमेरिकी व्यापार में अपनी विवादास्पद नियुक्ति पर संसदीय जांच का किया सामना। गाजा में आखिर युद्ध विराम लागू। और खेल में प्रतियोगिता के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने 1000वें कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक को जीता। न्यू साउथ वेल्स के पूर्व डेप्यूटी प्रीमियर जॉन बारलारो ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें न्यूयॉर्क स्थित व्यापार आयुक्त की भूमिका की पेशकश करने से पहले लोक सेवक जेनी वेस्ट पसंदीदा उम्मीदवार थी। अगस्त 2021 में प्रमुख और वरिष्ठ मंत्रियों के लिए इन्वेस्टमेंट न्यू साउथ वेल्स के एक ब्रीफिंग नोट ने पुष्टि की कि सुश्री वेस्ट अपने आवेदन में सफल रही हैं। लेकिन आज सुबह एक संसदीय जांच के सबूत के रूप में श्री बारलारो ने कहा कि उन्हें नोट पर हस्ताक्षर करना याद नहीं था और उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें किस भूमिका की पेशकश की गई थी।
I've looked into this. That brief has a digital signature on it. I don't recall actually seeing that brief myself. It is possible that I gave instruction to my staff to sign the brief on my behalf, but that has a digital signature on it. It hasn't got my personal signature on it.
श्री बारलारो ने ये भी गवाही दी कि व्यापार आयुक्त की नौकरी जीतने से ठीक पहले डेप्यूटी प्रीमियर के रूप में इस्तीफा देने का उनका निर्णय केवल संयोग था। उन्होंने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य कारणों से 2020 में राजनीति छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इस बीच न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटी कहते हैं कि उन्होंने परिवहन मंत्री डेविड एलियट को लंदन में एक उच्च भुगतान वाली सेवा भूमिका का वादा किया था। ये बात पूरी तरह से झूठी और आक्रामक है। ये सन हेराल्ड के सप्ताहांत के रिपोर्टों के अनुसरण करता है कि श्री पेरोटे ने श्री एलियट के लिए व्यापार से संबंधित दो विकल्पों का प्रचार किया था, जिसमें एक संसदीय सचिव की भूमिका भी शामिल थी जो मौजूद नहीं थी। प्रीमियर ने बताया कि उन्होंने राजनीति के बाद की नौकरियों पर चर्चा की जब परिवहन मंत्री ने मई के चुनावों में एक फेडरल सीट के लिए लड़ने में अपनी रुचि दिखाई, लेकिन फिर अपना विचार बदल दिया। उन्होंने बताया कि 9 रेडियो की 2GB की बातचीत प्रीमियर के रूप में उनकी भूमिका के दायरे से बाहर नहीं थी।
The allegations in relation to the creation of a role that I would give to somebody outside politics is completely false and offensive. And in from time to time, members of parliament, when they're seeking to leave parliament, will talk to colleagues in relation to what they might want to do next. I'll have colleagues speak to me from time to time about what roles they could play in the New South Wales parliament to continue to serve the people of New South Wales. They're natural conversations that a premier or a prime minister has with their team.
फेयर वर्क कमीशन वृद्ध देखभाल श्रमिकों के लिए मजदूरी बढ़ाने पर विचार करने के लिए तैयार है। फेयर वर्क अम्पायर को एक सबमिशन में रेसिडेंशियल और होम केयर वर्कर्स के लिए वेतन दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सामने आएगा। लेबर मंत्री तानिया प्लेबरसेक ने सेवन नेटवर्क को बताया कि अगर उनकी सरकार वेतन वृद्धि के लिए फंड देगी, लेकिन क्या आयोग को यह फैसला करना चाहिए?
We have said as a government that we will fund that decision. So if it flows through as increased wages, as the biggest contributor to supporting aged care, the government will find the extra money we need. You've got to think about what aged care workers are earning at the moment. They're earning as little as $22 an hour. So you can literally earn more stacking shelves at a supermarket than caring for some of our most vulnerable Australians. We do need to see a wage increase.
अमेरिका में एक 430 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जलवायु परिवर्तन दवा और कॉरपोरेट टैक्स बिल देश के सीनेट में पारित हो गया है। इसे राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए एक बड़ी जीत माना जाता है। डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि ये पार्टी के लिए इस साल के चुनावों में कांग्रेस पर नियंत्रण रखने का मार्ग प्रशस्त करेगा। सीनेट के बहस के 27 घंटे के सप्ताहांत सत्र के बाद कानून को मंजूरी दे दी, जिसमें रिपब्लिकन ने पैकेज को पटरी से उतारने का प्रयास किया। ये कानून, जिसे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट कहते हैं, को 5150 पार्टी लाइन वोट के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने टाई ब्रेकिंग मतपत्र डाला था। इसराइल का कहना है कि गाजा स्ट्रिप में इस्लामिक जिहाद सशस्त्र समूह के साथ 3 दिनों के संघर्ष को समाप्त करते हुए मिस्र की मध्यस्थता से संघर्ष विराम लागू हो गया है। दिनों की हिंसा के बाद 15 बच्चों सहित कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इस्लामिक जिहाद के अधिकारी दाऊद शहाब कहते हैं कि एक शर्त पर समझौते को कायम रखेंगे।
After vigorous Egyptian and international efforts, and in light of the Egyptian announcement of the Egyptian commitment to work for the release of Sheikh Bassem al-Sadi and the prisoner Khalil Awadeh, we, in the Islamic Jihad movement in Palestine, announce the entry into the ceasefire agreement as of 11:30 in the evening of this Sunday, the 7th of August 2022, and we confirm that we will abide by the ceasefire as long as the enemy adheres to it.
व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार 7 अगस्त को कीव में अमेरिकी अभिनेत्री जेसिका चिस्टेन से मुलाकात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सुश्री चिस्टेन को उनकी यात्रा के लिए धन्यवाद दिया।
थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन यूक्रेन।
They're incredibly brave and very strong, you know, and Ukrainian people are very strong.
क्वींसलैंड ने राज्य के पशुधन उद्योग को फूट एंड माउथ बीमारी सहित जैव सुरक्षा जोखिमों से बचाने में मदद करने के लिए एक कार्यबल स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल और पशु स्वास्थ्य ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों के साथ एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऑस्ट्रेलिया प्रकोपों का जवाब दे सके। लेकिन क्वींसलैंड जानवरों की बीमारी के जोखिमों से बचाव के लिए अपनी यूनिट स्थापित कर रहा है। प्रीमियर एनेस्थेशिया पेलाशे ने आज यानी सोमवार 8 अगस्त को एका रॉयल क्वींसलैंड शो में मिलने पर $22 मिलियन की योजना के बारे में कैबिनेट को खुलासा देने की उम्मीद है। क्राउन कैसीनो आज सिडनी में अपने दरवाजे खोलेगा, लेकिन केवल उन वीआईपी ग्राहकों के लिए जिनकी अंदर आने से पहले पृष्ठभूमि की जांच की गई है। ये पड़ताल न्यू साउथ वेल्स इंडिपेंडेंट लीकर एंड गेमिंग अथॉरिटी द्वारा दी गई लाइसेंस स्वीकृति की शर्तों का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज पेट्रिशिया बर्गिन के नेतृत्व में एक जांच के बाद क्राउन कैसीनो संचालित करने के लिए उपयुक्त नहीं था। जांच में विदेशी कबाड़ संचालकों के साक्ष्य सुने गए थे जिनके संभावित संगठित अपराध लिंक को सुविधा के माध्यम से व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। इस हफ्ते न्यू साउथ वेल्स सरकार कैसीनो ऑपरेटरों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने और संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों पर रोक लगाने के लिए डिजाइन किया गया कानून पेश करेगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ एंड्रयू जैक्सन ने SBS न्यूज को बताया कि उन्हें चिंता है अगर निगरानी की कमी रहने पर सुधार नहीं हो सकेगा।
They've had a whole raft of new team members join because of the cleaning of house. So it's essential that the regulators work very closely with these new senior execs to understand the new processes they're putting in place. To make sure that they are adhering to all of the anti-money laundering regulations, that they have consistent and highly frequent communications with them.
Deputy Greens नेता महरीन फारूकी कहती हैं कि ऑस्ट्रेलियाई राजनेताओं को फेडरल संसद चलाने के लिए दूसरे देशों की अपनी नागरिकता नहीं छोड़नी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 44 का मतलब है कि दोहरे नागरिक संसद के लिए खड़े नहीं हो सकते। सुश्री फारूकी 1992 में अपने पति और बेटे के साथ पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया पहुंची और राजनीति में शामिल होने के लिए अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ दी। उन्होंने SBS न्यूज को बताया कि ये ऐसी चीज है जिससे किसी और को नहीं गुजरना चाहिए।
I thought it would just be like an administrative thing. But as I was filling out that form, writing out the history of my family, you have to talk about your parents and your grandparents. I just felt as if I was being forced to give up my birthright, to give up my history and my culture. So I actually filled out the form, I signed it, and I put it in my drawer. It was that hard for me to actually submit that form.
और अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 69 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत ₹54.92 हो गई है। अब खबरें खेल जगत से। खेल में ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं की नेटबॉल में जीत के साथ कॉमनवेल्थ खेलों में अपना 1000वां स्वर्ण पदक जीता है। डायमंड्स ने जमैका के खिलाफ अपना मैच 55 से 51 की जीत के साथ जीता। इसे 4 साल पहले इंग्लैंड को 51 से 52 की विनाशकारी हार के बाद एक प्रतिदान के रूप में देखा गया है। कोच स्टेसी मारिकोविच ने सेवन नेटवर्क को बताया कि ये गौरवमय क्षण है।
And obviously representing Australia is just astronomical, but to be able to secure that 1000th goal and against Jamaica, who were playing well, and you know, the crowd certainly wasn't with us, and I think to absorb that pressure moment, yeah. Have the rotations that we did, it's just exciting.
दूसरी ओर टेनिस की बात की जाए तो निक किरियोस ने 3 वर्षों में अपना पहला ATP यानी दी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टूर खिताब जीता है। 27 वर्षीय ने फाइनल में जापानी खिलाड़ी योशिहितो निशियोका को 6-4, 6-3 से हराया। वे कहते हैं कि ये एक भावनात्मक जीत है।
I've been in some really dark places and just to be able to turn it around, and I think there's so many people who have helped me get there, but myself, I've shown some serious strength to just continue and just persevere and get through all those times and be able to still perform and win tournaments like this one.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बारिश की संभावना रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। एडलेड में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 4 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। कैनबेरा में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान -2 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। सिडनी में बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। ब्रिस्बेन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।